एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथसार में आज हम बात कर रहे हैं मराठी साहित्य के एक बहुत ही अहम पड़ाव की, एक ऐसा उपन्यास जिसने आते ही जैसे हलचल मचा दी, भालचंद्र नेमाड़े का कोसला।
हाँ, कोसला 1963। नेमाड़े जी तब बहुत युवा थे और ये सिर्फ किताब नहीं थी, एक बयान थी जैसे।
बिल्कुल, नेमाड़े जी जिनका जन्म 1938 में खानदेश में हुआ, वो सिर्फ लेखक नहीं एक विचारक भी हैं। उनका देशीवाद का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है।
देशीवाद यानी अपनी जड़ों की ओर लौटना, साहित्य में अपनी मिट्टी, अपनी भाषा, मतलब पश्चिम की नकल छोड़ो, अपनी बात अपने ढंग से कहो।
सही कहा, और नेमाड़े की भाषा वो तो कमाल है, एकदम कच्ची रोजमर्रा की खानदेशी पुट लिए हुए। 2014 में उन्हें ज्ञानपीठ भी मिला।
जी हाँ, और कोसला जिसका मतलब है कोकून या खोल, वो इसी देसीपन और एक तरह के विद्रोह की शायद पहली बड़ी आवाज थी। सोचिए 25 साल की उम्र में ऐसा उपन्यास,
और उसने मराठी साहित्य को चौंका दिया था। उस समय के जो आदर्शवादी या सामाजिक सुधार वाले उपन्यास थे उनसे ये बिल्कुल अलग था।
हाँ, इसका नायक पांडुरंग सांगवीकर वो कोई हीरो नहीं था, बल्कि एंटी हीरो कह सकते हैं, दुनिया से मोह भंग भटका हुआ।
इसीलिए इसे एंटी नॉवेल और एंटी बिल्डिंग्स रोमान भी कहा गया, मतलब ऐसा उपन्यास जो नायक के विकास की कहानी नहीं कहता, नायक कुछ बनता नहीं बल्कि
पीछे हटता है, अपने खोल में बंद हो जाता है।
तो आज हम इसी कोसला के खोल को जरा समझने की कोशिश करेंगे। पांडुरंग सांगवीकर की यात्रा, उसका अलगाव, शिक्षा पर उसका गुस्सा, प्रामाणिकता की तलाश, इन सब पर बात करेंगे।
चलिए फिर शुरू करते हैं पांडुरंग सांगवीकर से। कहानी शुरू होती है खानदेश के एक गांव से। पांडुरंग का परिवार काफी अमीर जमींदार किस्म का है। वो पुणे के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन फेल होकर गांव लौटा है, और लौटते ही फैसला करता है कि वो अपने असाधारण जीवन का ऐतिहासिक लेखा जोखा लिखेगा।
यहीं से विडंबना शुरू होती है ना, एक फेल हुआ लड़का खुद को ऐतिहासिक पुरुष कह रहा है।
यस।
उसकी महत्वाकांक्षा भी दिखाता है और शायद एक गहरी असुरक्षा भी।
बिल्कुल, शायद खुद पर ही व्यंग कर रहा हो। खैर, वो लिखना शुरू करता है, अपने बचपन को याद करता है, गांव का माहौल, सख्त नियम और पिता जगन्नाथ सांगवीकर का दबदबा।
पिता जो जमीन पैसे इज्जत को ही सब कुछ मानते हैं।
हाँ, और पांडुरंग का उनसे रिश्ता शुरू से ही तनाव भरा है, कोई संवाद नहीं। वो बचपन से ही खुद को उस माहौल में, परिवार में भी अकेला महसूस करता है।
ये पिता पुत्र का संघर्ष तो जैसे उपन्यास के केंद्र में है। दो किले आमने सामने, पर बीच में खाई। ये सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो पीढ़ियों का, दो सोच का टकराव है।
हाँ, परंपरा बनाम आधुनिकता कह सकते हैं, आजादी के बाद वाला भारत जहां ये सब चल रहा था।
गांव एक तरफ जड़े देता है तो दूसरी तरफ घुटन भी। पांडुरंग को वो घुटन महसूस होती है,
इसीलिए वो पुणे भागता है, उम्मीद लेकर कि शहर में, कॉलेज में उसे कुछ नया मिलेगा, बौद्धिक आजादी, अपनी पहचान।
पर होता क्या है,
पुणे आकर तो उसका मोहभंग और बढ़ जाता है, शहर भी उसे खोखला लगता है, कॉलेज प्रोफेसर्स अहंकारी लगते हैं, पढ़ाई रटने वाली।
हाँ, वो जो कहता है यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ हम जवानी के 4 साल डिग्री के बदले बेचते हैं, कितना तीखा कटाक्ष है।
बहुत तीखा। ये सिर्फ पांडुरंग की भड़ास नहीं है, नेमाड़े उस पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जो शायद मौलिक सोच को दबाती है।
बिल्कुल, औपनिवेशिक दौर की विरासत जो शायद क्लर्क बनाने के लिए बनी थी, विचारक नहीं। और यहाँ नेमाड़े के देसीवाद की झलक भी है, बाहरी थोपी हुई चीजों को नकारना।
पुणे में उसे अपने जैसे ही कुछ और दोस्त मिलते हैं, वो भी सिस्टम से नाराज, भटके हुए। उनका कमरा घंटों चलने वाली बहसों का अड्डा बन जाता है, फिलॉसफी, लिटरेचर, जिंदगी बेकार है, ऐसी बातें।
सिगरेट का धुआं और बड़ी बड़ी बातें। हाँ
हाँ, वो अजीब प्लान बनाते हैं, जैसे फुटपाथ पर रहने वालों की मदद के लिए एक ग्रुप बनाते हैं, दिनकर मंडल।
अरे हाँ, वो किस्सा। इरादा तो अच्छा था, पर हुआ क्या?
कुछ नहीं, अव्यवहारिक प्लान, आपसी झगड़े, पैसों का हिसाब नहीं, सब फेल हो गया। ये दिखाता है कि वो सोचते तो बड़ा है पर जमीन पर कुछ कर नहीं पाते।
उनकी आदर्शवादिता और असलियत के बीच का फासला दिखता है इससे।
इसी ग्रुप में एक दोस्त है, सुरेश बापट। वो पांडुरंग से बिल्कुल उल्टा है, पढ़ने में तेज, व्यवस्थित, सफल होने वाला।
अच्छा, पांडुरंग का क्या रिएक्शन है उसे देखकर?
वो उससे जलता भी है और शायद उसे छोटा भी समझता है कि ये तो सिस्टम का पुर्जा बन रहा है, अपनी आत्मा बेच रहा है।
ये सुरेश बापट का किरदार एक कंट्रास्ट देता है, दिखाता है कि उसी सिस्टम में सफल भी हुआ जा सकता है। सवाल ये उठता है कि सही कौन है।
हाँ, उपन्यास ये जवाब देता नहीं। खैर, पुणे का अनुभव पांडुरंग को और अकेला कर देता है और फिर वो एक बड़ा कदम उठाता है।
वो फेल होने वाला।
हाँ, वो जानबूझकर फाइनल परीक्षा में फेल हो जाता है। ये उसका विद्रोह है पिता के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ।
लापरवाही नहीं, एक सोचा समझा फैसला। वो कहता है पास होके क्या करूंगा, वही नौकरी वही जिंदगी। फेल होकर जैसे वो आजादी चुनता है।
लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अपमानित होकर गांव लौटना पड़ता है, पिता का गुस्सा चरम पर, घर में वो एक अजनबी, एक बोझ बन जाता है।
अपने ही घर में वनवास जैसी स्थिति। ये फेल होना उसे समाज के खांचे में फिट होने से तो बचाता है, पर उसे और अकेला और दिशाहीन भी कर देता है।
बिल्कुल। और इसी मुश्किल दौर में एक और घटना होती है जो उसे तोड़ देती है, उसकी छोटी बहन मणि।
हाँ, मणि, जिसकी चेचक से मौत हो जाती है।
जी, मणि जो गांव की मासूमियत का प्रतीक थी, पांडुरंग उसे बहुत मानता था। उसकी मौत वो पांडुरंग के लिए सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है।
नहीं, वो उसके सारे बौद्धिक तर्कों, उसके व्यंग्य को जैसे बेमानी कर देती है। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे आप बहस नहीं कर सकते।
हाँ, उसने लिखा भी है, शोक एक पत्थर है, आप इससे बहस नहीं कर सकते, आप इसे केवल ढो सकते हैं। पहली बार उसे शायद एहसास होता है कि दुनिया में उसके निजी दुख से बड़ा दुख भी है।
और ये घटना गांव की पिछड़ी सोच, स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी को भी दिखाती है। मणि शायद बच सकती थी।
हाँ, ये चीज पांडुरंग की कड़वाहट और बढ़ा देती है। मणि का चरित्र एक तरह से पितृसत्ता में औरत की चुप्पी और पीड़ा का भी प्रतीक बन जाता है।
मणि की मौत के बाद पांडुरंग और भी अपने में सिमट जाता है, उसका वो तीखापन कम हो जाता है, एक उदासी आ जाती है।
और उपन्यास कांत हमें वापस 25 साल के पांडुरंग पर लाता है। उसने अपने जीवन के वो 6 अध्याय लिख लिए हैं।
तो क्या उसे कोई जवाब मिला, शांति मिली?
नहीं, ऐसा लगता नहीं। अंत में बस एक थका हुआ ठहराव है। वो वही है पिता के घर में, गांव में। विद्रोह ठंडा पड़ चुका है, वो अपने कुकून में बंद है।
ये कुकून शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास का शीर्षक भी यही है, कुकून, जो बचाता भी है पर
कैद भी करता है, विकास भी रोकता है। पांडुरंग का कुकून भी ऐसा ही है, समाज के पाखंड से बचाता है पर उसे अकेला और निष्क्रिय भी बनाता है।
और यही ये उपन्यास एंटी बिल्डन्स रोमान बन जाता है। नायक परिपक्व नहीं होता, समाज में जगह नहीं बनाता, बल्कि पीछे हट जाता है।
ये हार है या जीत या कुछ और,
ये सवाल बना रहता है। और यही नेमाड़ी की शैली है, वो सीधी कहानी नहीं कहते। यादें, डायरी, लिस्ट, विचार, सब बिखरा हुआ, जैसे पांडुरंग का मन।
फर्स्ट पर्सन नरेटिव है जो हमें सीधे उसके दिमाग के अंदर ले जाता है। और भाषा, मानक मराठी के साथ खानदेशी का वो मिश्रण।
हाँ, वो आवाज को एकदम असली बनाता है, देसी वाद का असली रूप। और व्यंग्य तो हर जगह है।
बिल्कुल, खुद को ऐतिहासिक पुरुष कहना ही सबसे बड़ा व्यंग्य है।
जो उपन्यास हंसाता भी है, उदास भी करता है। जो लोग कभी सिस्टम से कटा हुआ महसूस करते हैं, उन्हें पांडुरंग में अपनी झलक दिख सकती है।
उसका फेल होना भी बेकार नहीं लगता। वो सवाल खड़े करता है कि आखिर सफलता है क्या? क्या सिस्टम का हिस्सा बन जाना ही कामयाबी है,
या फिर अपनी शर्तों पर जीना, अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहना ज्यादा जरूरी है, भले ही समाज उसे नाकामी कहे। पांडुरंग ने समझौता नहीं किया।
शायद यही उसकी जीत है, एक अंदरूनी जीत।
शायद ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहना,
या समाज द्वारा थोपी गई पहचानों के विरुद्ध अपनी असलियत की तलाश कितनी कठिन मगर जरूरी है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।